ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज के दिन का इस पहले सत्र का सबको बधाई, क्योंकि आज हम सेवा के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दो दिन हमने तपस्या, स्व उन्नति के बारे में काफ़ी चर्चाएं की है। आज सेवाओं में कहां कहां तक हमने आयाम प्राप्त किया है, स्पार्क ने कहां कहां तक कौन कौन से मंजिलें प्राप्त की है आज तक। कई ऐसी बातें हैं जो स्पार्क के मेंबर्स को भी मालूम नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट में काफ़ी डेवलपमेंट्स होते रहता है, तो वो सारी बातें आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक सूचना, ऊपर में ग्लोबल ऑडिटोरियम बी में एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये सेशन के बाद जब ब्रेक होगा उसमें कुछ लोग जाना, उसके बाद जब लंच का ब्रेक होगा तो उसमें कुछ लोग जा सकते हैं, और दोपहर में भी रहेगा वो एग्जीबिशन, और शाम को भी रहेगा, आज रात्रि के सेशन तक रहेगा। तो आप सब से अनुरोध है कि आप ज़रूर उसको सुन करके जाइए। वो एक्सप्लेनेशन सुनने का अनुरोध है, देखने के लिए तो खाली 5 मिनट लगता है लेकिन सुनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप सब समय निकाल कर ज़रूर सुन लीजिएगा सारा एक्सप्लेनेशन। 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन रहेगा, 10-15 मिनट का एक्सप्लेनेशन रहेगा, सारे चित्र और मॉडल्स जो बने हुए हैं। ये आप सबको सुनना क्यों ज़रूरी है, ये ऊपर में जो प्रदर्शनी लगा हुआ है वो देखना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमेशा एक प्रश्न रहा है सभी स्पार्क के मेंबर्सों के मन में, खास करके टीचर्स बहनों के मन में, कि स्पार्क के निमित्त, स्पार्क के संबंध में हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन साधन कौन से हैं, कैसे सेवा करें, ये एक प्रश्न कई बार मीटिंग में आया हुआ है। तो एक साधन बहुत अच्छा अभी अपने पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, और ये सेवाएं कहाँ कहाँ हो रही है हम आपको बताना चाहेंगे। इसका नाम स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन है। काफ़ी लोग ऑलरेडी देखा होगा, पिछले साइंस सर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था हमारा सितंबर महीने में, उस समय डायमंड हॉल में ये स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ था। तो आप में से कुछ परसेंटेज ने ऑलरेडी देखा हुआ है डायमंड हॉल में, और हैदराबाद और साउथ के 2-3 सिटीज़ हैं वहाँ पर रेगुलरली ये एग्जीबिशन चल रहा है। ये एग्जीबिशन में सिर्फ चित्र नहीं होते हैं, आपने देखा था जब प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में मुंबई लोकल चैप्टर के द्वारा, तो उसमें आपने देखा कुछ मॉडल्स भी हैं। तो ये पूरे 9 ब्रीफकेसेस का एक सेट है, और वो सेट को लेके जाना पड़ता है जहाँ पे भी ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होता है। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार ऊपर में, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ये हम इस विषय के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले इस 20वां जो वर्ष है स्पार्क का, इसमें हमें प्रदर्शनियां लगानी है अलग अलग शहरों में। मैं एक बार वीडियो दिखाता हूं, फिर बाद में आप सब अपना अपना राय बताना कि क्या करना चाहिए। एक कॉलेज है जो ऑलरेडी आपको बताया था, ये सुनने के बाद देखो बच्चों के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो आप जरा देखिए, कॉलेज के बच्चे है ये, ग्रेजुएशन कॉलेज है ये, उनके बच्चे जो है ये कितने हर्षित मुख होकर के कुछ प्राप्त हुआ है इस भावना से उन लोगों के ऊपर रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है उनके चेहरों पर। और एक बात आपको नोट करने को मिल रहा है कि वो कितने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, एक चित्त होकर सुन रहे हैं। सुनने के बाद फीडबैक फॉर्म भरने के लिए कितने सिंसियरिटी से वो लोग फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं, और फीडबैक फॉर्म का पूरा डाटा कलेक्शन किया है, सभी का रिएक्शन जो फीडबैक का है, ओपिनियन जो है वो यही है, किसी ने भी ऐसे नहीं कहा गुड, सिंपली कहा गुड, ऐसा नहीं है, सब ने कहा एक्सेलेंट, वेरी इंस्पायरिंग, समथिंग न्यू टू लर्न, ऐसे ऐसे रिमार्क्स फीडबैक्स दिया है लोगों ने। ये बॉम्बे के एक कॉलेज में जो भाई साहब बता रहे थे, कीर्ति कॉलेज में, ये वहाँ का ये वीडियो है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक चित्त होकर के सुन रहे थे, ये हमारा अनुभव था। तो श्रीकांत भाई ने कहा कि आप ये अपना अनुभव शेयर करना सभी के साथ, क्यों, क्योंकि एक बहुत अच्छा साधन मिला है हमें। कॉलेज के बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है ऐसी चीज़ों को देखने में, तो एक बहुत अच्छा साधन है कॉलेज के बच्चों तक पहुंचने के लिए। और आप सब जानते हैं हमारे पास भारत देश में युवा की आबादी कितनी है, तो ये युवा तक पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हमारे पास मिला हुआ है, स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन। और आप जानते होंगे कि 10 नेचुरल लॉज है, नेचुरल साइंस के 10 प्रिंसिपल्स हैं, वाइब्रेशंस, चेंज, साइकिल, ये सारे मेमोरी, ऐसे 10 प्रिंसिपल्स हैं। इन 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये नेचुरल साइंस चलता है, और स्पिरिचुअल साइंस ऑल्सो वर्क ऑन द सेम 10 प्रिंसिपल्स, ये बात वहाँ पे समझाया गया है चित्रों के द्वारा और मॉडल्स के माध्यम से। तो ये लोग बहुत अच्छा एक्सेप्ट करते हैं। अभी सेवाओं का जो प्लान है उसके लिए भाई साहब ने बॉम्बे के लिए टारगेट दिया है कि 50 कॉलेजेस में आपको करना है करके। तो श्रीकांत भाई ने कहा कि कम से कम 20 शहरों में, पूरे भारतवर्ष के 20 शहरों में ये प्रदर्शनी होनी चाहिए इस वर्ष। सेट जो है वो श्रीकांत भाई, मतलब आबू से एक सेट यहाँ पे रखा गया है, रखा जा रहा है आबू में, श्रीकांत भाई के कस्टडी में, और एक सेट मुंबई में रहेगा, एक सेट हैदराबाद में ऑलरेडी है, और साउथ में एक दो सेट्स ऑलरेडी घूम रहे हैं रेगुलरली। तो सेट का मैनेजमेंट किया जा सकता है, लेकिन पहले आपका इनिशिएटिव चाहिए। और आपने देखा परसों के दिन वो कीर्ति कॉलेज का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिखाया गया है, तो वो भी एक सपोर्ट हमको मिल सकता है। और जो भी गाइडलाइंस हैं वो सारी गाइडलाइंस आपको स्पार की तरफ से दिया जाएगा, और यहाँ तक कि गाइड्स भी एक दो दिया जा सकता है जिस शहर में भी वो एग्जीबिशन होगा। तो ये सारी सुविधाएं दिया जा सकता है। इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात आप में से जो समझते हैं कि हमारे शहर में भी हम ये एग्जीबिशन कॉलेजेस में हम लगाना चाहते हैं, हैदराबाद में एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे भी रिक्वेस्ट आया है कि एक सेट वहाँ पे प्लानिटोरियम है, आई थिंक नाम बिरला प्लानिटोरियम है, यस बिरला प्लानिटोरियम है, वहाँ के लिए भी एक प्लान चल रहा है, वहाँ पे भी एक सेट परमानेंटली वहाँ रखने का प्लान चल रहा है। तो इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, इसलिए श्रीकांत भाई ने कहा कि आपको ये बताना है, सबसे शेयर करना है। तो आप में से कौन से शहर वाले जो निमित्त यहाँ बैठे हैं, स्पार्क के मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, अपने अपने शहर में करना चाहते हैं, वो जरा बताएंगे। लुधियाना में आप करना चाहते हैं, कितना करना चाहेंगे आने वाले एक वर्ष में, अगले स्पार्क मीटिंग तक, अगले जनवरी तक, उनसे बात करेंगे। ठीक है, कॉलेजेस हैं, हाँ कॉलेजेस में आप यहाँ चलाने का कोशिश करेंगे, और आप कह रहे हैं टच द लाइट ऑलरेडी चल रहा है, ओके फैंटास्टिक, ठीक है। इसके मैनुअल्स बनाया जा रहा है, आप ऊपर देखेंगे कुछ चित्र बने हुए हैं, चित्र नंबर 1, 2, 3, 4 जो है ना वो बहुत ही रिफाइंड बना हुआ है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो चित्र है ना वो वेदी भाई करके है, बीके वेदी भाई फ्रॉम होसुर सेंटर, जो होसुर तमिलनाडु के बॉर्डर में आता है लेकिन है बैंगलोर कनेक्शन का सेंटर, वो भाई ने मिल करके, उनके साथ और भी एक टीम है, हिमलता बेन है, और उनके अलावा और भी दो तीन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने मिलकर के ये सारे चित्र और मॉडल्स का क्रिएशन किया है। तो इसमें हाँ आप लिखेंगे हिमाली बेन, आप जरा लिखना जयपुर, लुधियाना और सूरत, कानपुर लिख रही है हिमाली बेन, हाँ कानपुर के बाद आनंद हो गया, और वाड़मेर कहाँ आता है, राजस्थान वाड़मेर, ओके उसके बाद जरा पुणे, अच्छा पूना, पूना का तो ऑलरेडी कमिटमेंट आ गया है राकेश भाई की ओर से कि हम लोग 50 प्रदर्शनी करेंगे करके, ठीक है ना। तो कोई है जो 50 के ऊपर करना चाहता है, थोड़ा बोली लगा सकते हैं, ठीक है ना, हाँ कर देंगे, देखो लुधियाना से आवाज़ आई कि हम 50 के ऊपर करेंगे, ठीक है ना, ओके 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 ओके। हमारे ऊपर है कि हम कॉलेज के प्रिंसिपल को कैसे कन्विंस करें, बाकी तो लक्ष्य यह है कि साइंटिफिकली, मतलब साइंस के माध्यम से बच्चों को हमें ज्ञान पहुंचाना है, आत्मा कैसी होती है, लाइट क्या है, और परमात्मा एनर्जी क्या है, ये बातें आप ऊपर समझ लेंगे। आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ऐसा नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट्स ही समझेंगे, ये जनरल साइंस तो सभी को मालूम है, 7, 8, 9, 10 के साइंस तो सभी को मालूम है। जबलपुर नाम लिखना हिमाली बेन जी, शहादा, इलाहाबाद, आगरा, जो पंजाब में बठिंडा, ओके बठिंडा, आबू रोड, जैसलमेर, कोलकाता, देहरादून, नासिक, नासिक के बाद मध्य प्रदेश में, ओ सॉरी हिमाचल प्रदेश में दांगड़ा, ओ सॉरी गांगरा जी, के फॉर कांगरा, इंदौर, इंदौर एमपी बता दिया। आप लोग नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन खाली शहर का नाम बता रहे हैं, फिर हम कहाँ ढूंढते जाएंगे इंदौर में आकर के किसने कमिटमेंट दिया था हमको। लेकिन इंदौर से कितने लोग हैं, किसने कमिटमेंट दिया था। चलो ठीक है, ऐसे ही हम रमणीकता में बोल रहे हैं। बाकी आप सब अपने दिए हुए वचन को निभाएंगे, सेवा करेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, ठीक है ना। बाबा का संदेश पहुँचाना है। आप सबको मालूम होगा, 20 एक अनुभव की बात है, 20 नवंबर की मुरली है, सॉरी 20 जनवरी की मुरली है, उसमें बाबा ने कहा कॉलेजों में भी जाकर के आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाना है। और वही 20 तारीख को हमारा प्रिंसिपल के साथ अपॉइंटमेंट था, कीर्ति कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ। तो सुबह में ही बाबा ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको ये फाइनल करके आना है। और 23 और 24 तारीख को एग्जीबिशन का डेट था, कॉन्फ्रेंस का डेट था, तो उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लगाना था। तो 12 स्पीकर्स आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए, साइंटिस्ट लोग भी एक चित्त होकर के देख रहे थे, एक ने भी क्वेश्चन नहीं किया। ये इंडियन साइंस कांग्रेस में भी बहुत सारे रिसर्चर्स आए थे और आपने फोटो में देखा, नोबल साइंटिस्ट भी, नोबल लॉरेट भी आए थे। एक का भी कोई प्रश्न निर्माण नहीं होता है, प्रश्न पूछते हैं लेकिन विपरीत प्रश्न नहीं। हाँ, इनका क्यूरियोसिटी के तहत, नॉलेज के क्यूरियोसिटी से प्रश्न पूछते हैं लेकिन कोई विरोध नहीं होता है इस बात का। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये समय की उपलब्धि है, समय अनुसार हमको ये प्राप्त हुआ है, ये साधन प्राप्त हुआ है, हमें हर जगह पे संदेश पहुंचाना है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। इस एग्जीबिशन से संबंधित इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम अभी विराम देते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच कनिष, हाँ धुलिया नाम एक ऐड कर देना, और भी जिसको देना है तो वो मुझे बाद में आप लिख करके दे सकते हैं। तो हम, हाँ नवी मुंबई, नवी मुंबई तो मुंबई में समाया हुआ ही है, तो फिर भी अच्छा हुआ आपने बताया। तो बाद में आप ज़रूर संपर्क करना, इसके आगे की कार्रवाई हमको प्लान करना पड़ेगा कि सेट को कैसे सर्कुलेट करना है, कितने सेट्स बनाने हैं, ये सारी बातें हैं। इस सेट को बनाने के पीछे, एक सेट के पीछे 90,000-85,000 तक खर्चा आया है वेदी बाई को, तो ये भी आपके ध्यान में रहे। तो हम लोग मैनेज करेंगे, बाबा वो बनाएगा बाबा, और फिर हम सभी जगह पर सर्कुलेट करेंगे। तो डेट्स प्लानिंग अनुसार अगर हो तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकलेगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं, समय की रफ्तार दौड़ता जा रहा है। ये हो गई कॉलेजों की सेवा का समाचार। अब हम उस क्षेत्र को टच करने जा रहे हैं, रिसर्च की दुनिया, रिसर्च पेपर की पब्लिकेशन की दुनिया को टच करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 पेपर्स का पब्लिश के बारे में आपने इससे पहले के एक प्रेजेंटेशन में, शाम के प्रेजेंटेशन में कांतिलाल भाई ने कहा है कि वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में कैसे, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था उसमें कैसे हमारा पेपर एक्सेप्ट हुआ है, और इंडियन साइंस कांग्रेस में भी 2 पेपर्स एक्सेप्ट हुए हैं, और वो पेपर स्पार्क के नाम से सबमिट किया था, स्पार्क के नाम से एक्सेप्ट हुआ है। और ऐसे ही कुछ और भाई बहनों ने पुरुषार्थ किया है, रिसर्च एरिया में पुरुषार्थ किया हुआ है, उसके बारे में डिटेल जानकारी हमारे कनिष्क भाई देने के लिए आज हमारे बीच बैठे हैं। और कनिष्क भाई खास इसी प्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली से आए हैं, DRDO में आप PhD कर रहे हैं, DRDO के तहत आप PhD कर रहे हैं, राजयोगा ये आपका विषय है। और सुशील चंद्रा भाई जो थे परसों हमारे बीच, उनको अचानक जाना पड़ा कोई डोमेस्टिक रीजन से, तो वो सुशील चंद्रा भाई हेड है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, और उनके गाइडेंस में आपका ये रिसर्च का कार्य चल रहा है। और अभी तक कहाँ कहाँ तक हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है इस रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन के विषय पर, आप सबको ये ध्यान में रहे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जब हम कहते हैं, स्पार्क एक रिसर्च सेंटर है, तो उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो किससे होता है, हमारे कितने सारे रिसर्च पेपर्स एक्सेप्ट हुए हैं नेशनल लेवल पे जर्नल्स में और इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स में, इसके आधार से उसका क्रेडिट रेटिंग होता है। तो इसी के ऊपर पुरुषार्थ चल रहा है कुछ भाई बहनों का, तो आप सबके भी जानकारी में रहे कि आप पुरुषार्थ चल रहा है, और आप सबका भी इस पुरुषार्थ के लिए शुभ संकल्पों की जरूरत है, योगदान की जरूरत है। ओम शांति।
ओम शांति। जैसे भाई जी बोल रहे थे कि रिसर्च का जब हम बात करते हैं, रिसर्च की शुरुआत करते हैं, तो उसका महत्व ही तब जाता है जब रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं, और रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं तो पूरे विश्व में पता लगता है लोगों को, लोग पढ़ पाते हैं कि हमने क्या काम किया है, किस तरह से मानकों के अनुरूप हमने काम किया, और उसके बाद अपने सत्य, जो भी फैक्ट था, जो सच था उसको एस्टेब्लिश किया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने उसको एस्टेब्लिश करने के बाद उसको पब्लिश किया। तो इसीलिए रिसर्च पब्लिकेशन के बहुत मायने होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा योग है, योग हमने कुछ नया नहीं बनाया है, योग बाबा ने बहुत पहले दिया। तो जब बाबा ने बहुत पहले दिया वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके लिए हम पेटेंट नहीं ले सकते। बट हाँ, इस योग के द्वारा किस किस क्षेत्र में किस किस तरह के लोगों को और किस किस तरह के इंडिविजुअल्स को लाभ प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं और करते हैं, और करना भी ज़रूरी है। और उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशंस देते हैं, और रिसर्च पब्लिकेशन से एक हमारा मानकों के अनुरूप हम ये एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि हमारा राजयोग का प्रभाव किस किस तरह पर, ब्रेन पर या फिर पूरे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। कुछ स्टडीज़ अलग अलग करके की गई थी, जैसे DRDO के कंबाइंड स्टडी सबसे पहले की गई, लगभग 2011 में शुरुआत की गई इसकी। उसके बाद अटेंशन प्रोफाइलिंग, जिस पर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरा PhD थीसिस है इस पर, किस तरह से मेडिटेटर्स में, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में अटेंशन को हम जज कर सकते हैं, किस किस तरह अलग अलग तरह के अटेंशन को जज कर सकते हैं। EEG और fMRI के साथ साइमल्टेनियस स्टडी हुई। EEG के साथ हम मैं स्टडी कर रहा हूँ, और fMRI के साथ भी थोड़ा सा, बट EEG fMRI के साथ रजनीकांत भाई निमहंस में रिसर्च कर रहे हैं, और फिर बाद में पब्लिकेशंस की थोड़ी बात करेंगे। ये जो पहला स्टडी, जो कंबाइंड स्टडी था, ये इस तरह से इसका टाइटल दिया गया था, स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन फिजियोलॉजिकल अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। ये एक जॉइंट स्टडी था DRDO के 3 लैब द्वारा और स्पार्क इनिशिएटिव। और जैसे इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, फिजियोलॉजिकल अफेक्टिव और कॉग्निटिव पैरामीटर्स को राजयोगा ट्रेनिंग के बाद या राजयोगा के इंटरवेंशन के बाद एसेस करना। इसमें 4 ग्रुप्स हमने डिवाइड करे थे। पहला ग्रुप जो था उसमें लगभग 40 लोग लिए गए थे, और जो लोग ज्ञान में 1 वर्ष से थे, और आयु सब में सीमित रखा था, 20 से 50 वर्ष रखा गया था। क्योंकि कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं, तो हर रिसर्च में स्पेशली अगर ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट, अगर मनुष्य को एज अ सब्जेक्ट हम लेते हैं कि किस तरह से उन पर प्रभाव पड़ा, तो उसमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो एज को हमें लिमिट करके चलना होता है। हमने 20 to 50 ईयर्स का एज लिमिट करा था। ग्रुप 2 में भी सेम एज ग्रुप था, और जिनको ज्ञान का अनुभव 1 से 5 वर्ष था। ग्रुप 3 में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव, जिसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स, उनको कंसीडर किया था। ग्रुप 4 में जो थे हमारा DRDO का स्टाफ या अदर नॉन बीकेज, जो जिन भाई बहनों ने कभी भी कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं किया था, उनको लिया गया था। भाई और बहन अलग अलग सब लोग इस स्टडी में पार्टिसिपेट किए थे। पैरामीटर्स जो हमने देखे थे वो कुछ इस तरह से, रेस्टिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल आर्टरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ओरल टेम्परेचर, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्सेज, PEFR, EEG, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स थे कुछ, और गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, जिसको हम स्किन कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स थे, NEOPIR जो कि एंग्जाइटी के लिए यूज़ करते हैं हम, चिंता, हैप्पीनेस स्केल, होप स्केल, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल और एंगर स्केल। कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए हमने मेमोरी, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल के लिए, निमहंस की एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी आती है जिससे कुछ टेस्ट हमने लिए थे, और अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए लेटर कंसिलेशन टेस्ट लिया गया था। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं कुछ, जो कि कंप्यूटर पर परफॉर्म करे जाते हैं, और कुछ पेपर पेंसिल बेस्ड भी हैं। आपको एक पेपर दिया जाएगा और उस पेपर पर आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हों उसके अकॉर्डिंग। तो प्रैक्टिस प्रोसेस जो था वो ऐसा था कि रोज 15 मिनट देने थे आपको, और 6 राउंड में बाबा की जो रूहानी ड्रिल है उसकी प्रैक्टिस की गई थी, और हर रूहानी ड्रिल 2-2 मिनट की थी। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को 2 सेशन में 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कराया गया, और ये प्रैक्टिस लगभग 60 दिन, 2 महीने तक कंटिन्यू रही थी। तो टोटल जो हमने टेस्ट इवेल्यूएशन करे गए, वो टेस्ट इवेल्यूएशन, पहला इवेल्यूएशन करा था 30 दिन बाद, जिसमें कि लगभग 15 घंटे का मेडिटेशन का अभ्यास उन्होंने कर लिया था, हर एक दिन 15 मिनट के हिसाब से। और जो 60 दिन में, जो दूसरा 2 महीने बाद जो रीडिंग ली गई थी, उसमें टोटल मेडिटेशन प्रैक्टिस थी करीब 30 घंटे। जो रिजल्ट थे वो कुछ इस तरह से थे। इन रिजल्ट्स को अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने करा था, तो डिफेंस के ही, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के 3 इंस्टीट्यूट्स अलग अलग हैं, डिपास जो कि फिजियोलॉजी में काम करता है, और हाई एल्टीट्यूड जो कि सेना में, जो हाई एल्टीट्यूड पर हमारे जवान रहते हैं उनके लिए काम करता है, उनके लिए सुविधाजनक इक्विपमेंट बनाने में और उनके लिए फूड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि उनको मुहैया कराया जा सके और उस तरह की चीज़ें डेवलप करने में योगदान देता है। DIPR जो साइकोलॉजिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है, DIPR इंस्टीट्यूट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजोलॉजी साइकोलॉजिकल रिसर्च, को कॉग्निटिव और अफेक्टिव पैरामीटर्स दिए गए, कॉग्निटिव स्टेबिलिटी इन मास ने कंडक्ट की। द पास के कुछ पैरामीटर्स जो थे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल आर्टरल ऑक्सीजन, पेरिफेरल टेम्परेचर, स्किन कंडक्टेंस और रेस्टिंग EEG। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं EEG का सेटअप किया गया भाइयों और बहनों पर, और जैसे भाई बैठे हैं इनके ऊपर EEG के इलेक्ट्रोड्स लगाए जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वहाँ के डॉक्टर अभिरूप चटर्जी, उन्होंने इलेक्ट्रोड प्लेस करे हैं। उसके बाद ये बहन है, इनका स्लीप स्टडी करा गया, क्योंकि सोने के दौरान जो हमारा माइंड एक्टिविटी करता है, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, वो जो एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी के आधार पर भी हम कॉग्निटिव पैरामीटर्स को जज करते हैं कि किस तरह से हमारा मनोस्थिति है, किस तरह से हमारा मानसिक स्थिति और हमारी चीज़ों पर प्रभाव डालती है। तो ये भी स्टडी करा गया। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो अगले 60 दिन के बाद मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले भाइयों और बहनों में देखे गए। ब्लड प्रेशर जो था, ब्लड प्रेशर लगभग सभी लोगों में, इवन दिपास में, दिपास के जो लोग थे जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया था उन लोगों में भी रिड्यूस हुआ। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो लगभग सब में रिड्यूस हुआ, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी सारे बीके भाई बहनों में रिड्यूस हुआ। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में कई फैक्टर्स होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, और साथ साथ में लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का एक रेशियो होता है, जो कि एक मैं आपको बताऊंगा बाद में किस तरह से ये क्या इंडिकेट करता है। ऑक्सीपिटल EEG आँखों के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के, उस तरह से जो फ्रंटल रीजन से इलेक्ट्रोड लगाए थे, फ्रंटल रीजन से EEG लिया गया, उसमें अल्फा और बीटा का साइमल्टेनियसली इस तरह से देखा गया कि अल्फा बढ़ता है और बीटा रिड्यूस होता है। तो ये जो रिजल्ट थे ये शो कर रहे थे, जैसे ब्लड प्रेशर रिडक्शन इंडिकेट्स बेटर कार्डियक फंक्शन, जो कि राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस से अटेन किया गया। इम्प्रूव्ड पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाई HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड VLF, LF एंड HF परसेंटेज। तो जो ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया गया ECG का, उसमें HRV के टर्म्स में जो हमने बात कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस देखा गया। पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस को अगर हम सरल भाषा में बोले तो ये इस तरह से होता है, एक हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक अलग फंक्शन होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो अलग नर्वस सिस्टम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक। सिंपेथेटिक जो होता है वो हमें उत्तेजित करता है, और पैरासिम्पेथेटिक हमें शांत रखता है, सरल भाषा में, और अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस देखा गया, मतलब राजयोगी मेडिटेटर्स में शांति देखी गई, वो लोग शांत रहते थे, रिलैक्स रहते थे, इस तरह का इम्प्रूव देखा गया फंक्शन। ट्रेंड ऑफ रिडक्शन इज LF-HF रेशियो सिंबलाइज सिंफोवैगल बैलेंस। तो सिंफोवैगल बैलेंस सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और वैगल नर्वस सिस्टम, कभी देखते हैं आप कभी दौड़ते दौड़ते एकदम से जब बहुत तेज दौड़ना पड़ जाए तो पेट में दर्द की अनुभूति होती है, तो उसका रीजन यही होता है कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है और जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो पैरों में चला जाता है पेट की बजाय। तो इसलिए कई बार कहते हैं कि खाने के बाद एकदम से दौड़ना नहीं चाहिए, या इस तरह की कुछ चीज़ें बात करते हैं। तो जो सिम्फोवैगल बैलेंस है, वो सिम्फोवैगल बैलेंस का मैं एक रिडक्शन देखा गया, मतलब सिम्फोवैगल बैलेंस बेसिकली अच्छा माना गया वहाँ पे, और जो सिम्फोवैगल बैलेंस जो कि डिटरमाइन करता है ऑटोनॉमिक कंट्रोल को, इससे कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित रख सकते हैं, तो उसके लिए इसका एक सरल भाषा में हम बात कर सकते हैं इसकी। बेटर रिलैक्सेशन इज इंडिकेटेड बाय डिक्रीज्ड स्किन कंडक्टेंस, और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन रिलैक्स वेकफुलनेस इज इम्प्लिकेटेड बाई इम्प्रूव्ड अल्फा एंड रिड्यूस बीटा। जो अल्फा वेव, जैसे कई बार आप लोगों को पहले भी बताया है, मैंने भी बताया था पिछले 2013 के प्रेजेंटेशन में, अल्फा वेव जो है जब हम EEG में लेते हैं तो ये एक रिलैक्सेशन का सूचक होती है। तो अल्फा वेव जो बढ़ा था उससे माना गया कि रिलैक्स्ड स्टेट में था माइंड, और बीटा वेव जो होती है वो जब भी हम कोई मोटर एक्टिविटी करते हैं, हम चलते हैं, हम चलने के बारे में सोचते भी हैं, तो भी हमारे ब्रेन से जो ब्रेन वेव्स निकलती हैं, जो तरंगे मस्तिष्क से तरंगे निकलती हैं, वो बीटा के फॉर्म में होती हैं। उनका एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है 13 से लगभग 30 हर्ट्स। तो ये भी रिड्यूस देखा गया, मतलब कई बार स्ट्रेस होता है या टेंश किसी तरह का तनाव होता है तो उसमें बीटा बढ़ता है, बट यहाँ पर रिड्यूस देखा गया एक्सपेक्टेड आउटकम। क्योंकि ये जो बिकॉज राजयोग का मेडिटेशन प्रैक्टिस जो करी गई थी वो प्रैक्टिस तीनों ग्रुप्स ने, चारों ग्रुप्स ने करी गई थी, बट इनिशियली जो थर्ड ग्रुप था, जैसे जो ऑलरेडी लर्न कर चुके थे मोर देन 5 ईयर्स, तो वो ऑलरेडी उस स्टेट को अटेंड कर चुके थे, तो उनमें जो चेंजेस गए वो एक संयमित रूप से गए। बट जो जिन लोगों ने शुरू नहीं करा था या जो अभी नए थे, उनमें उनको रेगुलेट करने के लिए या रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया, तो उनमें इफेक्ट जो थे वो थोड़े से एलिवेटेड थे। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन करा था डिफेंस पर्सनल्स के लिए जो हमारे सेना में जवान होते हैं, और एक्सपेक्टेड आउटकम हमारे कुछ इस प्रकार से हो सकते थे, हुए हैं। एंड दैट दिस माइट हेल्प टू डेवलप द स्ट्रेटजीज फॉर साइकोफिजोलॉजिकल वेलबींग हु ऑफन आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एडवर्सिटी लाइक हाई अल्टीट्यूड, डेजर्ट एंड लो इंटेंसिटी। सेना में जो जवान हैं उनको हर परिस्थिति का सामना करना होता है, जैसे हाई अल्टीट्यूड, जब हिमालय की चोटियों पर रहते हैं, सियाचिन में जहाँ पर 0 से लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान रहता है, डेजर्ट की कंडीशंस जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और लो इंटेंसिटी एरिया, तो इन सारे एरियाज़ में क्या होता है, आपको एक फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। फिजिकल स्ट्रेस का सामना करने से ब्रेन को फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो ब्रेन जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करता है, और स्पेशली जब हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ब्रेन के पास जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती तो सोचने समझने की क्षमता, परखने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं छिन्न होने लगती हैं। तो वो जब क्षीण होने लगती हैं तो वहाँ पर कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो कोशिश करी गई कि राजयोग का मेडिटेशन, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ब्रीदिंग इंटरवेंशन नहीं है, किसी तरह की लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, तो इसको कंसंट्रेशन के रूप में और अटेंशन बढ़ाने के रूप में और बाकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने के रूप में रेगुलर एक प्रोसेस एज अ ट्रेनिंग दिया जा सकता है। और इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड, आरट्रैक करके एक ट्रेनिंग कमांड है जहाँ पर ट्रेनिंग जो जो जिस तरह की दी जाती है आर्मी को, आर्मी पर्सनल्स को, वहाँ पर ये एस्टेब्लिश हो पाए एज अ टूल, एज अ ट्रेनिंग टूल, ताकि जो भी हमारे सोल्जर्स हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में इंक्रीज आ पाए। दूसरा जो था, दिस विल हेल्प बाय मेंटेनिंग द मैन पावर एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द फिजिकल एंड मेंटल टर्मोइल ऑफ सर्विस पर्सनल, जो कि सर्विस पर्सनल मींस जो भी सेना में जवान हैं उनके लाइक मेंटल की ओस को, मेंटल जो डिसफंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा दूर करा जाए इसके द्वारा, और सिविलियन पॉपुलेशन भी इसका इंजॉय ले पाए। दूसरा DIBR स्टडी जो था, उसका हाइपोथेसिस था कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ राजयोग का मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑन अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशंस में और कॉग्निशन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में हमने देखा DIBR के रिजल्ट्स में। सैंपल जो थे, इनमें सैंपल स्टडी इस तरह से डिवाइड करे थे, 3 ग्रुप डिवाइड करे थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में, और इस तरह से कुछ लोग अलग अलग ग्रुप में डाले गए थे रैंडम बेसिस पर। टूल्स जो हमने लिए थे अफेक्टिव पैरामीटर्स के लिए, ये सारे टूल लिए थे, नियो PIR, हैप्पीनेस, होप और क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल। साथ में जो कॉग्निटिव पैरामीटर्स लिए गए थे उसमें मेमोरी के लिए रे वर्बल लर्निंग टेस्ट और रे ऑस्ट्रिच कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट लिया गया था, साथ में अटेंशन और कैंसिलेशन कंसंट्रेशन के लिए लेटर कैंसिलेशन टेस्ट लिया था, ये पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट है। सोशियो डेमोग्राफिक डेटा जो हमने देखा था वो लगभग इस तरह का था कि 2.5 लाइक कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं था, सारे नॉन सिग्निफिकेंट थे, तो दैट मीन्स किसी प्रकार के डेमोग्राफिक्स का प्रभाव इन रिजल्ट्स पर नहीं देखा गया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टडी को वैलिडेट करने के लिए। रिजल्ट्स जो थे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप के और 3 फेज में देखे गए, और स्पेशली फर्स्ट और सेकंड फेज में बहुत चेंजेस मिले। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज में, फर्स्ट और थर्ड फेज का जो डिफरेंसेस थे वो लगभग एंग्जाइटी, इम्पल्सिवनेस और वल्नरेबिलिटी, इनमें लाइक जैसे एंग्जाइटी में रिडक्शन हुआ, आपके चिंता मुक्त हुए, जो लोग थे जिन्होंने मेडिटेशन किया, इम्पल्सिविटी जो थी, इम्पल्सिविटी भी रिड्यूस हुई, वल्नरेबिलिटी टू थ्रेट्स के डर का एक जो कई बार लोगों में कई किसी प्रकार का डर होता है, तो वो डर का जो स्केल था किसी चीज़ से, स्पेशली फोबिया या इस तरह की चीज़ें, वो भी कम हुआ। फेज़ वन और फेज़ थ्री में जो कॉग्निटिव फंक्शंस देखे गए उसमें वर्बल लर्निंग से लेके अटेंशन और मैं जितने अटेंशन में ओमिशन और कमीशन एरर्स जो थे उसके बेसिस पे देखा गया कि सिग्निफिकेंटली, लगभग देखिए जहाँ जहाँ पर पीले रंग से मार्क किया है वो हाईली सिग्निफिकेंट डेटा है, जहाँ पर फेज़ वन और फेज़ थ्री में डिफरेंसेस देखे गए, स्कोर्स बढ़े हैं फेज़ वन से फेज़ थ्री में। और बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स जो जिन्होंने ध्यान का अनुभव बस शुरू करा था लगभग 1 साल तक, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया। हालांकि जो बिगिनर्स थे जिन्होंने शुरू करा था, उनको जब रेगुलर करने को बोला गया तो उनमें जिस तरह से उनकी मनोस्थिति में एक एलिवेशन था, वो एलिवेशन इतना हाई था कि अगर हम कंपेयर करें एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर से जो ऑलरेडी 5 से 10 साल, कम से कम 5 साल कर चुके थे, क्योंकि उनकी मनोस्थिति वो उस तरह से बन गई थी, तो उनकी मनोस्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, बट जिन्होंने नहीं करा था उनकी मनोस्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। तो इफेक्ट ऑफ राज हो गया ऑन अफेक्टिव फंक्शंस, जब हमने देखा गया तो एंग्जाइटी, एंग्री हॉस्टेलिटी, डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो अपने बारे में चिंता करते हैं, केवल अपने बारे में चिंता करेंगे कई बार अपने कि मैं ऐसा क्यों हूँ और इस तरह की जो चीज़ें सोचेंगे, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस के स्केल में भी बहुत लाइक सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिला। इम्पल्सिविटी, वल्नरेबिलिटी, ये सब में सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिला। होप और हैप्पीनेस स्केल, होप बढ़ा है और हैप्पीनेस भी बढ़ा है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। जो कंक्लूजन थे वो कुछ इस तरह से थे कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट वाज सीन बिटवीन बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑन फॉलोइंग अफेक्टिव फंक्शन, एंग्जाइटी, एंग्री हॉस्टेलिटी, डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इम्पल्सिविटी और वल्नरेबिलिटी। एक्सपर्ट्स जो थे, जो एक्सपर्ट मेडिटेटर्स थे, उनका स्कोर होप और हैप्पीनेस स्केल में बहुत हाई था। तो इनमास की एक स्टडी थी, इनमास की स्टडी का जो प्लान था वो कुछ इस तरह था। द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर्क इज टू एवेल्युएट द एनहांसमेंट ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव एबिलिटीज थ्रू राजयोग मेडिटेशन। न्यूरोकॉग्निटिव एबिलिटीज में हमने जज करने के लिए 30 दिन के ट्रेनिंग पीरियड पर एसेस करा था, और 6 सब्जेक्ट लगभग ईच ग्रुप से, हर ग्रुप से 3 सब्जेक्ट्स, वो 6 सब्जेक्ट्स लिए गए थे। और फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग्स फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब से, फ्रंटल आगे और पीछे से हमने ईजी रिकॉर्डिंग की एक थी, और 5 मिनट खुली आंखों पे ओपन आईज रेस्टिंग कंडीशन में, 20 मिनट ओपन आईज राजयोग मेडिटेशन के दौरान, और 5 मिनट वीडियो दिखाने पर। तो इसमें जो फ्रंटल लोब एक्टिविटी थी उसमें थीटा का इंक्रीमेंट पाया गया और बीटा का रिडक्शन पाया गया। तो जो जो भाई 5 वर्ष से अधिक मेडिटेशन करते थे, ड्यूरिंग मेडिटेशन 5 वर्ष से अधिक ध्यान का अनुभव है जिन्हें, उनको ड्यूरिंग मेडिटेशन उनका थीटा बहुत हाई मिला। और थीटा जब एलिवेट होता है तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है डीप लेवल रिलैक्सेशन को, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और न्यूरोसिस होता है वो बहुत कम हो जाता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को ये जोड़ता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ जाता है उनका, लोगों को बहुत लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, फोकस एबिलिटी या कंसंट्रेशन कहते हैं वो भी बढ़ जाता है। ये स्पार्क साइकोफिजियोलॉजी लैब का इनाग्रेशन किया गया 2012 में माननीय भ्राता रमेश भाई जी के द्वारा, और डॉक्टर मानस मंडल जो उस समय DIPR के हेड थे, डॉक्टर नटराजन और डॉक्टर भुजंग राव भी थे जो DRDO के चीफ कंट्रोलर थे उस समय, और दीदी भी हैं उस समय की फ़ोटो है ये 2012 की। मेजर जो हमारा सोच थी ये इस तरह का था कि अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग डिसऑर्डर्स में कई लोग, कई भाई अपने काम कर रहे हैं और कई हॉस्पिटल्स में राजयोगा को एज एन इंटरवेंशन दिया जा रहा है, बट ये जो कुछ स्टडी स्पार्क के और DRDO के साथ मिलकर करी गई, इनका मेजर जो रोल था, मेजर एम ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हेल्दी माइंड को, हेल्दी ब्रेन को जज किया जाए कि किस तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है मेडिटेशन का। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज पर लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में क्या किस तरह से चेंजेस आते हैं, उसके लिए एक और स्टडी करी थी। 10 साल 10 वर्ष से अधिक जिनका अनुभव था, केवल उन्हीं भाइयों बहनों को लिया गया था। जो मेथडोलॉजी थी उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस लिए गए थे, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, डिप्रेशन हैप्पीनेस स्केल और OHQ, ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चनेयर। पेबल करके एक पीपीवीटी करके एक टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर पर परफॉर्म करना होता है। लगभग 20 मिनट का ये टेस्ट होता है जिसमें आपको बहुत देर तक 20 मिनट तक लगभग पूरे 20 मिनट तक कंसंट्रेट होना पड़ता है किसी एक चीज़ के लिए जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है कंप्यूटर पर, और आपको रिएक्शन कीबोर्ड से देना होता है अपना। हाँ, ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चनर एक तरह से 29 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। मैं आपको फॉर्मेट बाद में अगर मिलेंगे तो मैं इसका फॉर्मेट दे दूंगा। और ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चंस में लगभग 29 क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको रेटिंग देनी होती है उसमें 1 से लेके 5 तक की, जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि आपका स्कोर जितना हाई होगा उतना ज़्यादा आप हैप्पी होंगे। तो इस तरह से ये स्केल्स होते हैं। इमोटिव यूज़ किया गया 28 लोगों में, ये रिकॉर्ड लाइक 28 लोगों का ये डेटा रिकॉर्ड करा गया। जब रिजल्ट्स हमने देखे या आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से थे। करेक्ट ट्रेल्स दैट मीन्स अगर आपको 20 मिनट में कितनी कितने करेक्ट आंसर्स आपने दिए थे, कितने करेक्ट रिस्पॉन्स आपके थे, वो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में सिग्निफिकेंटली हाई था इन कंपेयर टू कंट्रोल सब्जेक्ट जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया था। जो करेक्ट आरटी था, जो जितने भी करेक्ट रिस्पॉन्सेस थे उनमें जो रिएक्शन टाइम था वो रिएक्शन टाइम एलटीएम मींस लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में बहुत कम था और सिग्निफिकेंटली कंट्रोल से कम था। सिग्निफिकेंट मेजर्स मैंने यहाँ पर डाले नहीं है। एरर्स जो थे, कमीशन और ओमिशन एरर, वो भी लगभग नेग्लिजिबल थे लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में। एरर रेट बहुत कम था, जैसे रिजल्ट्स आपको बताया मैंने। अल्फा वेव था, अल्फा इंक्रीज था, और जो एक ऑब्जर्वेशन करके हमने निकाला कि जिस जितने समय उन मेडिटेटर्स को अटेंशन टास्क परफॉर्म करते हुए देखा गया था, तो देखा कि वो लोग अपने अटेंशन को सस्टेन कर पा रहे हैं पूरे 20 मिनट तक, या 20 मिनट से अगर ज़्यादा भी बढ़ रहा है, कई बार वो टास्क का ड्यूरेशन 1-2 मिनट बढ़ जाता था, तो अच्छे से उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं और अच्छे से उसको देख पा रहे हैं। फ्यूचर प्लान जो इनमास का है या बाकी डीआरडीओ के कुछ लैब्स का फ्यूचर प्लान है, इस तरह से ईजी वेबफॉर्म्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स को कंपेयर करना राजयोगा की हेल्प से, राजयोगा की ट्रेनिंग देके, और अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड्स में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग में, 3 महीने की ट्रेनिंग में, या 1 साल, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जिसे हम बोलते हैं उस तरह की स्टडी परफॉर्म की जाएंगी। और साथ में अभी इस बार के इनिशिएटिव्स में शायद श्रीकांत भाई ने बताया हो या श्रीकांत भाई बताएंगे, कुछ इस तरह के प्लान भी हैं कि अलग अलग यौगिक स्थितियों को, मनोस्थितियों को किस तरह से एस्टेब्लिश करा जाए, उसके लिए भी कुछ रिसर्च प्रपोजल्स डाले गए। और FMRI और FNIR ये कुछ नए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा ब्रेन की इमेजिंग कर सकते हैं, तो ब्रेन इमेजिंग के थ्रू भी हम एस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन से किस तरह से एनाटोमिकल चेंजेस आते हैं ब्रेन में, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो आप कहते हैं कि ब्रेन घट गया बढ़ गया, या ब्रेन का वजन कम हो गया बढ़ गया, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस भी, या ब्रेन के कनेक्शंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से कनेक्टिविटी है, क्योंकि ब्रेन में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको भी एस्टेब्लिश करा जाएगा। ये एक स्टडी रजनीकांत भाई ने राजयोगा मेडिटेशन पर ईईजी और FMRI के साथ एक साथ करी गई। ईईजी FMRI को साथ में करने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है, बिकॉज ईईजी जो इक्विपमेंट है वो आपको टेम्पोरल रिजोल्यूशन देता है। टेम्पोरल रिजोल्यूशन को अगर सरल भाषा में समझे, तो जैसे मैंने अगर आपको कोई टास्क दिया करने को, अगर कुछ सोचने को भी दिया, या केवल आपको आँख झपका पलक झपकाने को बोला गया, तो पलक झपकाने के बाद जो आपके रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस मेरे ईईजी में हर सेकंड या मिली सेकंड्स में भी मैं वो रिस्पांस देख सकता हूँ। तो अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करने को दिया गया, तो कुछ टास्क करने के लिए या कुछ सोचने के लिए आपके ब्रेन में कुछ प्रोसेस चलते हैं, वो आपके बोलने से या आपके करने से पहले शुरू हो जाते हैं, तो उनको जज करने के लिए ईईजी एज अ टूल यूज़ किया जाता है। और साथ में FMRI जो है वो ब्रेन की इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। MRI का बेसिकली ये एक एडवांस फंक्शन है। इनके जो एम एम एंड ऑब्जेक्टिव थे ये थे टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल एंड क्लिनिकल असेसमेंट। तो इन्होंने अलग अलग तरह के असेसमेंट करे, और जैसे ये ईजी प्रिपरेशन आप देख रहे हैं, ये भाई के एक हमारे भाई हैं, भाई के ऊपर ईजी अपरेटस लगाया हुआ है। ईजी के कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं, लगभग 128 या 256 इलेक्ट्रोड सर पर लगाए गए हैं, और पूरे ब्रेन का ये मैपिंग करता है। ब्रेन मैपिंग के द्वारा पता लगता है कि ब्रेन में कौन से किस पोर्शन में, किस पार्ट में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम अनलॉक कर सकते हैं। और ये इस तरह का कुछ इक्विपमेंट हम स्पार्क लैब में भी बाबा के आशीर्वाद से लगाया जा रहा है। ये इस कुछ ईजी एफ एम आर प्रिपरेशन जैसे रजनीकांत भाई करते थे, सबसे पहले ईजी की कैप लगाने के बाद फिर उनको स्कैनर में डाला जाता था ताकि उनका जो रिएक्शंस थे या रिएक्शन टाइम्स थे वो मेजर करे जा सके। वहाँ पर अंदर कुछ टास्क परफॉर्म करना होता था तो उनके रिमोट्स जो थे, जो आपको एक्चुअल रिमोट के एक्शंस लेने थे, वो एक्शंस आपको हाथ पर एक ट्रिगर दिए जाते थे, ट्रिगर से परफॉर्म करना होता था। इंडियन स्माइल एंड इंजरीज सेंटर करके एक न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी एक हमारा राज योगा को स्पाइनल इंजरीज की हीलिंग में प्रयोग किया गया। तो हीलिंग ऑफ पेशेंट और रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, क्योंकि जो स्पाइनल इंजरीज के पेशेंट्स होते हैं जिन उतना जो दर्द होता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी जो उन्हें डील करते हैं दे ऑल्सो गेट्स इन टू द ट्रबल ऑफ गेटिंग टेंस्ड। एंड पॉजिटिविटी एनहेंसमेंट, जो केयर गिवर्स होते हैं, केयर गिवर्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें सांत्वना देने की, और जिस तरह से वो सेवा करते हैं तो उस तरह से उनके लिए भी सोचा गया। बैक डिप्रेशन स्केल यूज़ किया गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो ISI की थी उन्होंने सजेस्ट किया था। प्री मेडिटेशन स्टेट में जो हमने देखा, इसके जो रिजल्ट्स थे कुछ इस तरह से, प्री मेडिटेशन स्टेज में जो स्केल हमने दिया था उस स्केल के आधार पर इवेल्यूएशन किया गया कि सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन था। बट पोस्ट मेडिटेशन स्टेज में, जो कि 1 महीने बाद हमने रिपोर्ट किया था रेगुलर मेडिटेशन इंटरवेंशन के बाद, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल हो गया डिप्रेशन का। ये ISIC की स्टडी थी जो कि अभी भी कंटिन्यू है, और कुछ और रिजल्ट्स पॉसिबली नेक्स्ट टाइम पब्लिश हो सकते हैं। दूसरी एक स्टडी जैसे बताया था, अभी ये स्टडी करेंटली चल रही है और ये मेरा मेडिटेशन थीसिस भी है, मेरा PhD थीसिस भी है, अटेंशन प्रोफाइलिंग इन लॉन्ग टर्म राजयोगा मेडिटेटर्स। इसमें मटेरियल्स और मेथड्स इस तरह से थे कुछ, अभी 25 लोगों का, 25 अपने भाइयों का जो कि 10 वर्ष से ऊपर अनुभव कर चुके हैं ज्ञान का, और रेगुलर ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, योगिक लाइफस्टाइल जीते हैं, समर्पित हैं, उन भाइयों का EEG लिया गया शांतिवन में ही। और ये एक जो सिस्टम इमोटिव है उसकी हेल्प से लिया गया। इस तरह का कुछ सिस्टम होता है, एक बैंड होता है जिसको आपको सिर पर पहनाया जाता है और उसके बाद फिर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक भाई की जो जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही थी उस समय का फोटोग्राफ है। एक उनको टास्क परफॉर्म करने का दिया गया और साथ में उनका EEG भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके बाद जो रिजल्ट्स हमें मिले वो अब जिस जैसी अपेक्षा थी वैसे रिजल्ट हमें मिल पाए हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। प्री मेडिटेशन रिजल्ट्स जो थे जिस समय, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स थे, इनकी अवस्था कहते, जब मैंने सबसे पूछा तो सबका कहता ज्ञान में तो हैं और ध्यान में हमेशा रहते हैं। तो सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये ब्रेन में कुछ पोर्शंस होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, ये पार्ट्स एक्टिवेटेड थे जो कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों के लिए। जैसे सुपीरियर फ्रंटल गायरस है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, आप अपने बारे में जान पाते हैं, अपने बारे में आपको अपनी जानकारी रहती है, सेल्फ की जानकारी रहती है, आप कॉन्शियस रहते हैं अपने लिए, अपने लिए कॉन्शियस मतलब कॉन्शियसनेस आप में रहती है, इन्वायरमेंटल के इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के साथ साथ अपने बारे में भी सेल्फ अवेयरनेस रहती है। और हाई लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी एक्टिवेटेड पाया गया। साथ में कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग, कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग में जैसे हम परखने की क्षमता, जब हम बात करते हैं गुणों में, तो परखने की क्षमता के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन में वो भी एक्टिवेटेड पाया गया। ड्यूरिंग मेडिटेशन जिस समय ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते समय जो सबसे ज़्यादा जैसे हम कहते हैं कि खुशी का अनुभव होता है, तो शायद सारे मेडिटेटर्स में खुशी का अनुभव एक कॉमन रूप से वो वाला पार्ट जो था सुपीरियर टेम्पोरल गायरस वो एक्टिवेटेड था, साथ में इन्फीरियर पराइटल लोब्यूल। तो इस ये एक पोर्शन होता है ब्रेन में जो कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी रिस्पॉन्स के भी लाइक ये पोर्शन भी सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एक्टिवेटेड पाया गया। और रेगुलर मेडिटेशन की वजह से ये जो एरियाज थे वो हाईली एक्टिवेटेड थे मेडिटेशन के बाद, क्योंकि एक अवस्था जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद की अवस्था में भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ध्यान करने के जस्ट बाद हमने जो रिकॉर्डिंग ली गई, उसमें भी बहुत सारे ब्रेन एरियाज एक्टिवेटेड थे। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये विजुलाइजेशन एस लोरेटा की हेल्प से किया गया। ये पिक्चर्स वैसे पेट स्कैन जो होता है या एमआरआई स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन जैसे ही स्कैन थे, बट इनको जो रिकॉर्ड किया गया था वो ईईजी के थ्रू किया गया था। तो ईईजी के जो डेटा था, ईईजी के जो रिजल्ट से, उन रिजल्ट्स को जब हम एस्टेब्लिश करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं हम इमेजिंग के माध्यम से, तो एस लोरेटा करके ये टूल है, लो रेजोल्यूशन टोमोग्राफी, और ये इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने ब्रेन एक्टिवेशंस जज करे कि किस तरह से थे। तो इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल जो पैराइटल लोब में होता है हमारे, इस पर ये फेशियल एक्सप्रेस परसेप्शन के लिए। तो यही शायद शायद बाबा की याद में कुछ ध्यान का अनुभव कर रहे हो तो उस वक्त शायद फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि फेशियल परसेप्शन के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिवेट पाया गया। दूसरा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस जो कि टेम्पोरल लोब में होता है, फीलिंग ऑफ जॉय जैसे खुशी का अनुभव जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये पार्ट भी। क्यूनियस ऑक्सिपिटल लोब जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जब आप खुश रहते हैं तो ये वाला पार्ट एक्टिवेटेड रहता है। ये पार्ट वैसे बेसिकली बेसिक विजुअल प्रोसेसिंग के लिए भी होता है। जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं, आंखें खुली आपकी जब रखते हैं तो खुली आंखों में ये वाला पार्ट हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क मेडिटेशन में बहुत अहम रोल रखता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की बात जब करेंगे तो ये एक कुछ ब्रेन पार्ट्स होते हैं जो एक साथ फंक्शन करते हैं जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। ये कहते हैं जब बिल्कुल शांति का अनुभव करते हैं, कुछ सोच नहीं रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं कि विचार चलते हैं, तो जो विचार चलते हैं इंट्रोसेप्शन चलता है और अपने बारे में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो सारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में पाया जाता है। मेडिटेटर्स में ये देखा गया है, जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं वो प्रैक्टिस के बाद उनमें डीएमएन का एक्टिवेशन कम होता है। उसका कारण ये होता है कि डीएमएन एक्टिवेशन लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में जो डीएमएन एक्टिवेशन होता है उसमें कमी इस तरह पाई जाती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग जजमेंट पावर उनकी क्विक होती है, तो उनको बार बार चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती हैं, बार बार चीज़ों के बारे में विचार नहीं करना पड़ता है, एक विचार लेके हमेशा चलते हैं और सेल्फ परसेप्शन उनका अच्छा रहता है, इमोशन बैलेंस रहता है और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो होता है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई उनका से नाता लाइक रखते हैं। तो ये जो रिजल्ट कैलकुलेट करे गए 14 चैनल इमोटिव से, इसको ये सारे रिजल्ट्स ये दर्शाते थे कि जो ब्रेन पार्ट्स एक्टिवेटेड थे वो रिस्पॉन्सिबल थे सेल्फ अवेयरनेस के लिए, कोऑर्डिनेशन विद एक्शन ऑफ सेंसरी सिस्टम, माने कि हमें जो भी काम दिया गया हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से उनको समझ पा रहे हैं। मैं अगर आपको कुछ टास्क देता हूँ तो मैं अगर 4 इंस्ट्रक्शन या 5 इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो उसको आप कितना सुन पा रहे हैं और उनको सुनने के बाद कितना परसीव कर पा रहे हैं और उस पर एक्शन ले पा रहे हैं। साथ में इमोशन फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, जो इमोशन रेगुलेशन, जब हमारे पास कई सारी अवस्थाएं ऐसी आती हैं कि दुख का अनुभव होता है, बट वो दुख में भी हमें सुखी रहना है या उसमें भी एक जैसा रखना है खुद को, तो वो कैसे करते हैं, उन भावों को संयमित रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो ब्रेन पार्ट्स होते हैं, वो ब्रेन पार्ट्स भी एक्टिवेटेड देखे गए लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में। लर्निंग और मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये फंक्शंस कुछ होते हैं लर्निंग और मेमोरी के, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में जैसे प्लानिंग हुआ या निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, परखने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ जो होती हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आता है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में के लिए जो पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी एक्टिवेटेड देखे गए। हालांकि ये 14 चैनल ईजी था तो बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक्टिवेशंस ढूंढना बहुत मुश्किल है इसमें, इसीलिए अब जो लैब स्टेब्लिश की जा रही है जिसमें 64 चैनल का ईजी इक्विपमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया था पीछे एक भाई के लगा हुआ था, तो उस तरह का इक्विपमेंट, इस तरह का एक इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है जो कि और अच्छे से और ज़्यादा स्टेब्लिश रूप में हमें राजयोगा की जानकारी देगा। ये एक पोस्टर था जो कि कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। जैसे कि बताया आपको, जो भी काम करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के बाद रिसर्च एस्टेब्लिश करने के लिए उसको लोगों के बीच में लाना होता है, तो लोगों के बीच में लाने का माध्यम या तो जनरल होते हैं या कॉन्फ्रेंस होती हैं। तो कॉन्फ्रेंस में इस पोस्टर को भेजा गया था और एम्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, एक बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है एम्स दिल्ली का, तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी सिस्कॉन 2014 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर में, तो इसको भेजा गया था वहाँ पर और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली थी। और इसी प्रकार से हमारे अजय भाई ने निमेंस में एक पोस्टर प्रेजेंट किया था, क्विक एंड इजी मेडिटेशन रैपिड स्टेट चेंजेस इन राजयोगा मेडिटेशंस पे। उन्होंने अपने एफएमआरआई के और ईआरपी के कुछ रिजल्ट्स पब्लिश करे थे इस पोस्टर में, जिसको बेस्ट पोस्टर का अवार्ड भी मिला निमेंस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। रजनीकांत भाई ने जो ईजी एफएमआरआई पर एक आर्टिकल जो अभी देखा, जो रिसर्च किया था उस पर एक आर्टिकल लिखा, जो कि एक जर्नल ऑफ न्यूरो इमेजिंग में भी पब्लिश हुआ था, और साथ में उसके बाद और अच्छे रिजल्ट्स के साथ जब भाई ने स्कैन करके एक अमेरिकन जर्नल है उसमें इसको भेजा, और अभी पीयर रिव्यू उसका चल रहा है, पेपर एक्सेप्ट हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, अब तक का जितने भी हमारे पेपर पब्लिश हुए हैं ब्रह्म कुमारीज के या राजयोगा के ऊपर, शायद सबसे अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में ये पेपर पब्लिश हो रहा है, 5.9 इम्पैक्ट फैक्टर, तो बहुत अच्छा प्रभाव था इसमें। एक और रिसर्च पब्लिश करी गई थी जो डीआरडीओ के द्वारा जो प्रोग्राम किया गया, उसमें डॉक्टर अरुणिमा गुप्ता की और निशी मिश्रा की के एज ऑथरशिप में ये रिसर्च पब्लिश हुआ था, रिसर्च इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च में हुआ, जिसका बहुत अच्छा लगभग 1 से 2 इम्पैक्ट फैक्टर के बीच में इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, तो ये भी एक अच्छी हमारी प्राप्ति की गई। करंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स इन मास में हैं, इन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड लाइट साइंसेज डीआरडीओ का जो संस्थान है वहाँ पर, अटेंशन प्रोफाइलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म राजयोगा मेडिटेटर्स, एम्स में जो है, एम्स में मेडिटेशन इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, तो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को राजयोगा मेडिटेशन दिया जा रहा है, जिसके प्रभाव से कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके, इसको जज करा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की हेल्प से, सोशल साइंस ICSSR बेसिकली एक फंडिंग एजेंसी है जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट को भेजा गया है। ये प्रोजेक्ट है राजयोगा मेडिटेशन इंटरवेंशन को स्कूल चिल्ड्रंस में, जिनमें स्पेशली ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, मैं किस किस तरह से यूज़ करा जाए, और लर्निंग डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और राजयोगा मेडिटेशन को एज एन इंटरवेंशन टूल एस्टेब्लिश करा जाए। साथ में अमेरिकन फेडरेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के साथ भी बात चल रही है, और उनके साथ प्लान किया जा रहा है राजयोगा मेडिटेशन को एज अ प्रिवेंटिव फॉर सुसाइड अटेम्प्ट इन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पेशेंट्स, क्योंकि देखा गया है डिप्रेशन का जो रेट है वो विकसित देशों में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका जैसे देश में एक बहुत ज़्यादा है, और जो सुसाइड अटेम्प्ट के लगभग 85% केसेस में जो आयु होती है वो 20 से 25 वर्ष के बीच होती है, बल्कि 15 से 25 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उन लोगों का एक युवा पीढ़ी का रुझान सुसाइड करने में जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए एक अच्छा प्लान हम कर रहे हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने में मन नहीं लगता है उनका, पढ़ते ही पढ़ नहीं पाते हैं या फिर पढ़ते नहीं हैं, आपको लगता है कि शायद वो ढीठ हैं या मन नहीं है इनका पढ़ने का, बट वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका उनका उनको ये इस तरह का बीमारी होती है ADHD, अटेंशन उनका कम होता है, और अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से हाइपर एक्टिव भी होते हैं साथ में, हाइपर एक्टिव के साथ साथ वो बहुत सारे अलग अलग काम एक साथ करेंगे बट कोशिश करते हैं, बट जिसका रिजल्ट निकलता है कि वो किसी भी तरह काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ADHD एक तरह का लाइक मेंटल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी तो नहीं बोलेंगे, मेंटल डिसऑर्डर है जो कि स्पेशली केवल बच्चों में ही मिलता है, और ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं किसी चीज़ को समझना, और कई बार अक्षर आपको कई बार अक्षर नहीं समझ पाते हैं, डिसलेक्सिया जिन बच्चों को होता है वो अक्षर जो लिखे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, जो गिनती लिखी होती है वो नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह से बच्चों में एक अटेंशन डेवलप करा जाए, अटेंशन डेवलप करने के लिए राजयोगा मेडिटेशन का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ थी, और आप लोग पार्ट ले सकते हैं, जिन जिन लोगों ने DRDO और स्पार्क के थ्रू अपने नाम दिए थे वो लोग के लिए अभी एक अनाउंसमेंट करवा दूंगा, तो आप लोग पार्ट ले सकते हैं और योगदान दे सकते हैं अपना रिसर्च एक्टिविटीज़ के एक्टिवेशन में। ओम शांति। हाँ।